तो इस समय हम लोग रेमना में है, क्षीर चोर गोपीनाथ। तो सारे आप देखिए लोकल डिवोटीज भगवान को पहले जगाया कीर्तन करके, है ना। तो ये स्वाभाविक रूप से भगवान के भक्त हैं। और ये जगह गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको भी बताऊंगा कैसे महत्वपूर्ण है। जब हम विग्रह के दर्शन कर रहे थे तो आपने देखा होगा आपके बाई तरफ जगन्नाथ जी थे, फिर उसके बाद श्री मदन मोहन, और उसके बाद में जो एक स्टोन पे गड़े हुए है ना, वो क्षीर चोर गोपीनाथ है। और क्षीर चोर गोपीनाथ के बाई और जो है वो श्री गोविंद देव है। विग्रह के बारे में हमें पता होना चाहिए जब हम दर्शन करें, है ना। तो जब हम ये लेक्चर अभी खत्म करेंगे आपको बता देंगे, तो आप दोबारा जाइए भगवान के दर्शन के लिए और जोर से बोलिए जगन्नाथ की जय, मदन मोहन की जय, क्षीर चोर गोपीनाथ की जय, गोविंद देव की जय, है ना। पद्मचरण प्रभु बता रहे थे पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने पूछा था यहाँ पर कि जो क्षीर चोर गोपीनाथ के विग्रह हैं ये करीब 1,28,00,000 वर्ष पुराने हैं विग्रह। तो अभी 28वां मनवंतर चल रहा है, तो विग्रह जो हैं ये 24वें मनवंतर के त्रेता युग में भगवान राम ने बनाए थे। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण की आंखें काफी बड़ी होती हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की जो नयन कमल है वो कानों तक खींचे होते हैं, है ना। बहुत ही सुंदर आंखें होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो क्षीर चोर गोपीनाथ की आंखें छोटी हैं, है ना। भगवान वनवास के दौरान थे और भगवान बाद एक बार भगवान राम बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माता सीता ने पूछा आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो उन्होंने बोला मैं जो द्वापर युग है उसमें मैं कृष्ण अवतार के बारे में सोच के मुस्कुरा रहा हूँ। तो उन्होंने क्योंकि आसपास काफी हरियाली थी तो माता सीता ने बोला मुझे भी आप दिखाइए उनके, मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान राम ने अपने तीर से एक स्टोन के ऊपर कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो रूप है वो गढ़ दिया। तो अभी वो गढ़ रहे थे कि माता सीता से रुका नहीं गया, बहुत विवल हो गई वो भगवान का रूप देख के, तो उन्होंने फौरन माल्यार्पण कर दिया गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं। तो माता सीता के माल्यार्पण करते ही प्राण प्रतिष्ठा हो गई भगवान में, है ना। लेकिन अभी आंखें पूरी तरह से बनी नहीं थी अभी, तो भगवान राम ने फिर थोड़ा सा वो आंखें जब बनाने लगे तो तीर से बना रहे थे तो खून निकलने लग गया। तो भगवान राम ने कहा चलो ये विग्रह ऐसे ही रहेंगे। तो भगवान के इस विग्रह का नाम गोपीनाथ था पहले, तो क्षीर चोर गोपीनाथ भगवान के विग्रह का नाम कैसे पड़ा और यहाँ पे और क्या महत्वपूर्ण स्थान है। एक महत्वपूर्ण स्थान तो यही है जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, ये श्री रसिकानंद प्रभु की समाधि मंदिर है, है ना। आप जब विग्रह के दर्शन करेंगे तो आपके एक तरफ बाई ओर जो है श्यामानंद प्रभु के जो है चित्र लगा हुआ है और दाई ओर जो है रसिकानंद प्रभु का चित्र लगा हुआ है। तो आप दोबारा जाएं प्रणाम करने के लिए तो श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु को भी अवश्य प्रणाम करें, है ना। उनके कृपा से कृष्ण भक्ति मिलेगी, ठीक है। सो ये बात है करीब 600 वर्ष पुरानी बात है, ये 600-650 साल पुरानी बात है। तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं श्री माधवेंद्रपुरी श्रीपाद। सो माधवेंद्रपुरी कौन है, उनका क्या महत्व है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं श्रीला ईश्वरपुरी और श्रीला ईश्वरपुरी के गुरु हैं श्री श्री माधवेंद्रपुरी। ठीक है, तो माधवेंद्रपुरी जो है वो हमेशा कृष्ण प्रेम में विवल रहते थे और हमेशा यही सोचते थे कि कृष्ण प्रेम नहीं मिला, जीवन व्यर्थ हो गया, कृष्ण प्रेम नहीं मिला, हमेशा यही सोच के रोते रहते थे। वो ये नहीं सोचते थे मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, है ना, और कोई उनको सम्मान देता था तो अच्छा नहीं लगता था उनको। ठीक है, अच्छे भक्त का जो गुण यही होता है कि अगर उनको डांट पड़े तो वो खुश होते हैं कि कोई मेरी देखभाल कर रहा है, अगर तारीफ करे तो उनको बहुत संकोच होता है ना। सो एक बार माधवेंद्रपुरी जो है वो गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन में। ठीक है, तो उनको बहुत उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, व्रत कर रहे थे वो, तो एक जगह बैठे विश्राम कर रहे थे तो एक छोटा सा बालक आया। तो बालक ने उनसे पूछा, ये आप बाबा अब इतने थके हुए हो, मतलब कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया? तो माधवेंद्रपुरी श्रीपाद ने बोला कि नहीं, मतलब ठीक है मिल जाएगा तो खा लेंगे, उसमें क्या है। तो वो बालक ने बोला एक मिनट बैठो यहीं पे, मैं अभी आ रहा हूँ। तो बालक दौड़ के गया और उनके लिए दूध एक मटकी में डाल के ले आया। तो माधवेंद्र गुरु ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे भूख प्यास लगी है। तो बालक ने कहा कि वो कुएं पे कुछ स्त्रियां बात कर रही थी कि एक साधु बैठे वहां पर, तो मैं इसलिए आ गया। तो तुमने कहा चलो मटकी तो लेते जाओ वापिस, तुम पियो मैं अभी आ रहा हूँ, वापसी मैं अभी आकर दे जाऊंगा। सो माधवेंद्रपुरी ने दूध पिया बिल्कुल अमृत के समान। हाँ, फिर वो बैठे रहे, कई घंटे बैठे रहे, बहुत टाइम तक बैठे रहे कि वो बालक आएगा अपना पात्र लेके जाएगा, लेकिन वो बालक आया ही नहीं, है ना। सो जब वो माधवेंद्रपुरी सोए विश्राम कर रहे थे तो उनको स्वप्न में वही बालक आए। तो उन्होंने बोला देखो मुझे ना बहुत गर्मी लग रही है, मैं मुझे दबाया हुआ है इधर पास में ही। उन्होंने जगह बताई कि मुझे इस जगह पर जो है दबाया हुआ है, मुसलमानों के डर से पुजारी ने मुझे वहां पर दबा दिया था, तो वहां पे काफी झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो मुझे वहां से निकालो और मेरी पूजा शुरू करो। तो माधवेंद्रपुरी बहुत खुश भी हुए और बहुत रोए भी। वो खुश ये हुए कि उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे, और रोए इसलिए कि वो पहचान नहीं पाए, नहीं तो हो सकता हाथी पकड़ लेते। सो फिर अगले दिन माधवेंद्रपुरी श्रीपाद वो सारे गांव वालों को लेके गए, उस जगह खुदाई कराई तो गोपाल के विग्रह निकले, है ना। तो श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी के जो विग्रह हैं उसको गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया और उनकी पूजा शुरू की और अन्नकूट महोत्सव मनाया उनके लिए, और कई दिनों तक रुक ही नहीं रहे थे लोग। कई दिनों तक कभी कोई गांव कह रहा था कि आज हम अन्नकूट करेंगे, कभी कोई गांव कह रहा था आज हम अन्नकूट करेंगे, तो कई महीनों तक अन्नकूट उत्सव चलता रहा। और हजारों हजार घड़े पानी लेके आए, दूध लेके आए भगवान का अभिषेक करने के लिए. सो एक बार माधवेंद्रपुरी सब चल रहा है ठीक. माधवेंद्रपुरी एक बार विश्राम कर रहे थे तो वो गोपाल विग्रह दोबारा उनके स्वप्न में आए और उनको बोला कि मुझे अभी भी बहुत गर्मी लग रही है तो मुझे चंदन का लेप करो, है ना. तो उन्होंने बोला चंदन कहाँ से मिलेगा, तो उन्होंने बोला उड़ीसा उत्कल की तरफ जाओगे चंदन मिल जाएगा, वहां से जाओ और मेरे लिए चंदन लेके आओ. तो माधवेंद्रपुरी काफी वृद्ध थे, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे जाऊंगा, कैसे लाऊंगा, कैसे होगा सारा काम. बस आदेश मिल गया और चल पड़े, है ना. तो वो चलते चलते माधवेंद्रपुरी जो है वो रेमणा में पहुंचे, है ना. तो रेमणा में जब वो पहुंचे तो वो बाहर बैठ के जप कर रहे थे. किसी को पता नहीं था ये कौन है साधु, किसी को उनके यश का, उनकी महिमा का किसी को भी आइडिया नहीं था. तो उसी समय भगवान को भोग लग रहा था. यहाँ पे भगवान को भोग लगता है क्षीर का, जो आपने कल आपने ग्रहण की थी आप सब लोगों ने, है ना. उसको बोलते हैं अमृत केली, हाँ उसका नाम है अमृत केली. ऐसी क्षीर आपको पूरे संसार में मिलेगी नहीं. सो भगवान को क्षीर का भोग लगाने के लिए जब पुजारी आया तो श्रील माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए, मैं इसको चख लूं. क्यों सोचा उन्होंने, उन्होंने सोचा कि मैं एक बार इसको चख लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कैसे बनती है. तो मैं जाके गोपाल जो विग्रह है उनको भोग लगाऊंगा, है ना. तो वहां पर जैसे उनके मन में विचार आया तो उनको बहुत ग्लानि हुई, उनको बहुत ग्लानि हुई. तो वहां पर वो गए, मंदिर छोड़ के बाहर चले गए. बहुत उनको अफसोस हुआ कि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो आप खाने के बारे में नहीं सोच सकते, है ना, क्योंकि भगवान को भोग लगा रहे हैं. तो हालांकि अपने लिए नहीं सोच रहे थे, वो विग्रह के लिए सोच रहे थे, लेकिन बहुत उनको दुख हुआ कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, है ना. तो वो वहां से उठ के बाहर चले गए और बाहर बैठ के जप करने लगे. तो पुजारी ने शाम को, जैसे हमने रात को भी दर्शन किए थे ना, तो पुजारी ने भोग वगैरह लगा के दर्शन बंद किए. तो और जितना भी भोग का सामान है सारा हटा लिया. तो वो क्षीर के कई पात्र भोग लगाए भगवान को. तो गोपीनाथ जी ने एक पात्र पर्दे के पीछे छुपा लिया. और रात को जब पुजारी विश्राम कर रहे थे तो पुजारी के सपने में आया, उन्होंने बोला देखो बाहर एक मेरा एक बहुत अच्छा भक्त बैठे है माधवेंद्रपुरी. सो मैंने पर्दे के पीछे एक जो है क्षीर का एक पात्र मैंने छुपा के रखा है, तो तुम वो पात्र लेके जाओ और जाके माधवेंद्रपुरी को दो. तो पुजारी एकदम हैरान हो गया, उसने वो पात्र उठाया, पीछे पात्र रखा हुआ था, और वो बाहर जाकर उसने आवाज मारी माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है. तो माधवेंद्रपुरी श्रीपाद ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने बोला भाई मेरा नाम है माधवेंद्रपुरी. तो उन्होंने बोला ये भगवान ने आपके लिए क्षीर चोरी किया, तो आपको देने के लिए उन्होंने मुझे बोला. तो माधवेंद्रपुरी ने वो लिया, तो चारों तरफ शोर मच गया कि मतलब माधवेंद्रपुरी नामक एक संत है उनके लिए भगवान ने चोरी कर ली क्षीर की. तो तब से भगवान के विग्रह का नाम क्या पड़ गया, क्षीर चोरा गोपीनाथ, है ना. तो बंगाल में और उड़ीसा में क्ष को ख बोलते हैं, है ना। सो इसीलिए बोलते हैं खीर चोरा गोपीनाथ, लेकिन वास्तव में क्षीर है। हाँ, तो क्षीर और खीर में फर्क क्या होता है? खीर में चावल गिरते हैं नहीं, लेकिन खीर में चावल का एक दाना भी नहीं होता, बिल्कुल दूध होता है। दूध को काढ़ काढ़ के उबाल के उसको एकदम गाढ़ा बना देते हैं और उसमें तरह तरह के पदार्थ मिलाते हैं, जिसे इतना स्वादिष्ट भगवान के लिए भोग बनाते हैं, जिसको अमृत के लिए, अमृत के समान मधुर जो है। तो श्रील माधवेंद्र पुरी ने वो ग्रहण की खीर, और जो पात्र है उसको पीस के उसको एक पोटली में बांध दिया और रोज थोड़ी सी मिट्टी खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि भगवान ने छुआ था उसको। नहीं, चोरी करेगा चोर तो छू के पकड़ के तो चोरी करेगा, ऐसे कैसे चोरी कर लेगा? नहीं तो जो वो गोपाल जिन्हें उनको दूध दिया था उसका भी उन्होंने चूरा बना के मटके रख ली थी, और थोड़ी थोड़ी उसकी जो है जो चूरा था वो रोज खाया करते थे महाराज, बोले है ना। हम लोग तो फटाक से फेंक देते हैं, चलो खा लिया फेंको उसको नहीं, लेकिन माधवेंद्र पुरी जो है उन्होंने ग्रहण किया। सो फिर माधवेंद्र पुरी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उनकी बहुत सम्मान दे रहे थे, तो उनको बड़ी घबराहट होने लग गई माधवेंद्र पुरी को। तो वहां से निकले वो फटाफट, वहां से चले और उड़ीसा की तरफ उस गए। वहां से फिर वो चंदन लेकर आए, और चंदन लेके आए तो वापसी में भी यही रुके वो रेमुना में, है ना। तो फिर उनके सपने में दोबारा से गोपाल विग्रह आए, तो उन्होंने बोला मुझे बहुत गर्मी लग रही है, फटाफट मुझे लेप लगाओ। तो उन्होंने बोला मैं पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस समय ये रेलगाड़ी वगैरह थोड़ी ना होती थी, तुरंत तो बैठे कुछ घंटों में पहुंच जाओ। नहीं तो बैलगाड़ी पे ऐसे जाते थे लोग। तो उन्होंने बोला मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी पहुंचूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं वेट नहीं कर सकता, भगवान ने बोला, गोपाल विग्रह ने, उन्होंने बोला कि जो गोपीनाथ के विग्रह हैं और गोपीनाथ और मुझ में कुछ भी फर्क नहीं है, तो तुम जो है ये जो चंदन तुम लेके आए हो इसका पेस्ट बना के मुझे यहीं पर चंदन लगा दो। गोपीनाथ के विग्रह को चंदन लगाओगे तो मुझे मेरी गर्मी जो है, जो मुझे गर्मी लग रही है, दूर हो जाएगी। तो माधवेंद्र पुरी ने यहीं पर जितने चंदन की उनके पास लकड़ियां थी, है ना, कोई ऐसा नहीं कि एक दो लकड़ियां बटुए में डाल के चल रहे थे, बहुत सारा ढेर सारा चंदन था। हाँ, 40 किलो चंदन था, है ना। तो उन्होंने सब लोगों को साथ में मिलाया और चंदन को घिसा, उसका पेस्ट बनाया और यहाँ पे गोपीनाथ जी के विग्रह को लगाया। तो वो टाइम से जो गौड़िया वैष्णव है वो गर्मी के दिनों में भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा इस कौन के मंदिरों में तो दिखाई देता है, जहाँ पे भगवान के श्याम वर्ण है, आपने देखा नहीं, पीले हो जाते हैं बीच में एक महीने के लिए, अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा बोलते हैं उसको, है ना, उसको चंदन यात्रा बोलते हैं। तो अभी शुरू होगी, अभी है ना, अब गर्मियां शुरू होगी ना, तो आप सबको बता देंगे ये पावन जनार्दन प्रभु, रामचंद्र प्रभु, तो आप सब जाना मंदिर में इस्कॉन के, और वहां पे सब बहुत अच्छे से चंदन घिसना, और चंदन घिस के वहां पे उन्होंने पात्र रखे होते हैं, चंदन घिस के उसमें डालते जाना, वो बता देंगे कैसे करना होता है। तो पत्थर की सिल्लियां रखी होती हैं और चंदन होता है, पानी होता है, गुलाब पानी नहीं होता, गुलाब जल होता है ना, तो उसे अच्छी तरह से वो रगड़ के आप सब करना, लेकिन बहुत ज्यादा जोर मत लगाना, क्योंकि आप लोगों को अभ्यास नहीं है ना, अगर आप बहुत ज्यादा जोर लगा के करोगे ना तो क्या होगा कि शाम को फिर आपके हाथ दर्द करेंगे, मसल्स आपके टाइट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करना। और वैसे भी भगवान की सेवा मधुर भाव से करनी चाहिए, ये नहीं कि चंदन की लकड़ियां इसको 5 मिनट में पूरी घिसना है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। बहुत ही आराम आराम से कि भगवान की सेवा में ये प्रयोग होगा, है ना। तो माधवेंद्रपुरी जी ने यहाँ पर भगवान को चंदन का लेप किया, तो वहां पर गोपाल जो गोपाल जी हैं उनको बिल्कुल ठंडक मिल गई। तो आप बोलोगे वो गोपाल जी के विग्रह कहाँ पर है वृंदावन में, है ना। हम तो कई बार गए, हमने दर्शन नहीं किए गोपाल जी के विग्रह के, तो गोपाल जी के विग्रह अभी वृंदावन में नहीं है, गोपाल जी के विग्रह राजस्थान में है। और अब जो भगवान के विग्रह हैं उनका नाम हो गया श्रीनाथ जी। तो जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा में जो भगवान के विग्रह हैं वो गोपाल विग्रह हैं, ठीक है। सो वही जो गोपाल विग्रह हैं उनका नाम अभी वो श्रीनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है, है ना। तो माधवेंद्रपुरी जी सेवा कर रहे थे और फिर उन्होंने आगे सेवा देते देते फिर वो वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विट्ठल जी, तो विट्ठल जी के पास वो सेवा चली गई। फिर वो मुसलमानों के डर से, औरंगजेब सारे भगवान के विग्रह तोड़ रहा था ना, तो उनके डर से जो है भगवान की सुरक्षा के लिए उनको राजस्थान बहुत सारे विग्रह ले गए, जैसे मदन मोहन जी का विग्रह करौली में है, है ना, और गोविंद देव जी का विग्रह जयपुर में है, गोपीनाथ जी का विग्रह जयपुर में है, राधा माधव का विग्रह जयपुर में, राधा दामोदर उनके विग्रह जयपुर में, और लोकनाथ गोस्वामी महाराज के विग्रह का नाम मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा, उनका विग्रह भी त्रिपुरिया चौक जगह है उसके पास ही है, राधा दामोदर मंदिर के पास ही, और वहाँ पर उनके भी विग्रह हैं। तो और वृंदा और जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, है ना। सो शिला माधवेंद्रपुरी जी के स्मृतान से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान की सेवा में कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, क्या होगा कैसे होगा घर कैसे चलेगा, अगर मैं रोज 16 माला करूँगा तो मेरे को बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचें कि अगर हम 2 घंटे माला करेंगे तो पढ़ाई का कैसे काम चलेगा, तो वास्तव में जो लक्ष्मी है और सरस्वती है वो भगवान की दासी हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो क्या लक्ष्मी जी और सरस्वती जी आपकी मदद नहीं करेंगी, अवश्य मदद करेंगी, है ना। और आप लोग देख सकते हो इस कॉन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और आ भी रहे हैं नए स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, और बहुत सारे गृहस्थ हैं जो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं और काम भी उनका ठीक चलता है, है ना। तो जब भगवान पापियों का पेट भर रहे हैं तो क्या भगवान अपने भक्तों का पेट नहीं भरेंगे, हाँ। योग क्षेमम भामि हम भगवान ने ऐसे थोड़े ना बोल दिया, हाँ। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति भी करेंगे, हमें सोचना चाहिए कृष्ण भक्ति ही करेंगे, है ना, और भगवान रक्षा करेंगे हमारी। लेकिन हम भगवान की भक्ति करने का मतलब नहीं है कि निठल्ले हो जाओ तो भगवान पास करा ही देंगे या धंधा चली जाएगा अपने आप। तो भक्त लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान के भक्त निठल्ले बेकार नहीं होते, तो वो अच्छे से भक्ति के साथ साथ भी वो अच्छे से अपनी स्टडी भी करते हैं और अच्छे से काम वाम अपना करते हैं, जिससे कि और लोग आकर्षित हों भक्ति में जुड़ने के लिए, है ना। सो आप सब लोगों को अच्छे से बहुत अच्छे से भक्ति भी करनी चाहिए और बहुत अच्छे से अपना जो है काम इत्यादि भी देखना चाहिए, पढ़ाई भी अच्छे से करनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग बोले कि वो देखो कितना अच्छा लड़का या लड़की है पूरा अच्छे से अपना चैंटिंग भी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो लोग अपने बच्चों को बोले तुम भी ऐसा करो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चैंटिंग कर रहे हो, ठल्ले बैठ गए, लोग बोले भैया कुछ भी करियो चैंटिंग मत करियो क्योंकि निठल्ले हो जाते हैं उससे, ठीक है ना। सो ये क्षीरचोर गोपीनाथ का इतिहास है। और जैसा हमने बताया, हम अभी श्री रसिकानंद प्रभु की समाधि में बैठे हैं, समाधि मंदिर के यहाँ। और रसिकानंद प्रभु जो हैं वो श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य हैं। और श्यामानंद प्रभु किसके शिष्य हैं, हमने कल बताया था आपको, है ना, श्री हृदय चैतन्य गोस्वामी के, है ना। और हृदय चैतन्य गोस्वामी किसके शिष्य हैं, गौरीदास पंडित के। और गौरीदास पंडित कृष्ण लीला में कौन है, सुबल है वो, है ना, भगवान कृष्ण के सखा है वो, है ना। और श्यामानंद प्रभु और हृदय चैतन्य और गौरीदास पंडित इन सबके आपस में वृंदावन में बहुत ही मधुर लीला हुई थी। तो कभी आप लोग वृंदावन चलेंगे तो आपको श्यामानंद प्रभु के बारे में और गौरीदास पंडित के बारे में आपको बताएंगे हम, है ना। सो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो इधर राइट साइड में जाके श्री माधवेंद्रपुरी की भी समाधि मंदिर है, ठीक है। तो हम वहाँ पर भी जाकर श्री माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे और उनसे कृपा याचना करेंगे, ठीक है।